समाज शास्त्र की वास्तविक प्रकृति, रियल नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र कैसा विज्ञान है, इसकी वास्तविक प्रकृति क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर रॉबर्ट वीरस्टीड ने इस प्रकार दिया है। नंबर एक, समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है न कि प्राकृतिक विज्ञान। सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस एंड नॉट ए नेचुरल साइंस। सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों में प्रमुख अंतर अध्ययन वस्तु का है। सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन वस्तु सामाजिक घटनाएं हैं, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों की प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करने वाले विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है और समाज शास्त्र का भौतिक या प्राकृतिक घटनाओं के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, यह केवल इन घटनाओं के सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन अवश्य करता है। समाज शास्त्र क्योंकि मूलतः प्राकृतिक तथ्यों का नहीं बल्कि सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, अतः यह एक सामाजिक विज्ञान है। नंबर दो, समाज शास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है न कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाज शास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है या सामाजिक घटनाओं का अवलोकन करता है और पक्षपात रहित होकर उन्हें ठीक उसी रूप में प्रकट करता है जिस रूप में वे हैं। अन्य शब्दों में समाज शास्त्र क्या है का उत्तर देता है न कि क्या होना चाहिए। इसी कारण समाज शास्त्र को एक प्रत्यक्षात्मक, निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान कहा गया है न कि आदर्शात्मक विज्ञान। इस शास्त्र का आदर्श से अर्थात अच्छे बुरे, उचित अनुचित, सही गलत से कोई संबंध नहीं है। या तो सामाजिक तथ्यों को जिस रूप में वे पाए जाते हैं ठीक उसी रूप में बिना किसी प्रकार के पक्षपात के प्रस्तुत कर देता है। नंबर तीन, समाज शास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है न कि व्यावहारिक विज्ञान। समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति इस बात से और स्पष्ट हो जाती है कि यह एक विशुद्ध विज्ञान है न कि व्यावहारिक विज्ञान। विशुद्ध विज्ञान के रूप में समाज शास्त्री का कार्य समाज से संबंधित ज्ञान के क्रमबद्ध संग्रह से है, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन, विश्लेषण और निरूपण से है, न कि उस ज्ञान को व्यावहारिक क्षेत्र में प्रयोग में लाने से। समाज शास्त्री सामाजिक नीतियों का निर्माण निर्धारण नहीं करते, विधायकों को यह नहीं कहते कि उन्हें कौन सा कानून बनाना है और कौन सा रद्द करना है। साथ ही समाज शास्त्री का संबंध सामाजिक सेवा कार्यों से भी नहीं है। एक सामाजिक वैज्ञानिक के रूप में उसका संबंध बाल अपराधियों, डाकुओं और समाज विरोधी लोगों को सुधारने या लूले लंगड़े, अंधे, निर्धन या गरीबों की सहायता करने से नहीं है। स्पष्ट है कि समाज शास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है न कि व्यवहारिक विज्ञान। नंबर चार, समाज शास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है न कि मूर्त विज्ञान। समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है और समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया गया है। सामाजिक संबंध अपने आप में अमूर्त हैं, जिन्हें देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार जब समाज शास्त्र का अध्ययन विषय समाज और सामाजिक संबंध ही अमूर्त हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से ही अमूर्त विज्ञान हुआ, मूर्त नहीं। नंबर पाँच, समाज शास्त्र एक सामान्यीकरण विज्ञान है न कि विशेषीकरण। समाज शास्त्र विशिष्ट व्यक्तियों, घटनाओं या समाजों के अध्ययन में रुचि नहीं लेकर सामान्य सामाजिक घटनाओं और प्रक्रियाओं में रुचि लेता है। यह शास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं तथा सामाजिक संबंधों के सामान्य नियमों का पता लगाता है। मानवीय समूहों और समाजों की प्रकृति, स्वरूप, विषय वस्तु तथा संरचना के सामान्य सिद्धांतों की खोज करता है। नंबर छः, समाज शास्त्र एक तार्किक और साथ ही अनुभवात्मक विज्ञान है। समाज शास्त्र को अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता है, अवलोकन करके तथ्यों को संकलित करता है, उनको वर्गीकृत करता है, उनका विश्लेषण करता है, सामान्य निष्कर्षों को निकालता है और नियमों का प्रतिपादन करता है। समाज शास्त्र अपनी अध्ययन सामग्री में दार्शनिक या आध्यात्मिक तथ्यों को सम्मिलित नहीं करके तर्क पर आधारित और क्षेत्रीय अध्ययनों से प्राप्त तथ्यों को ही सम्मिलित करता है। इसी कारण समाजशास्त्र को एक तार्किक और अनुभवात्मक विज्ञान कहा गया है। नंबर 7, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है न कि विशेष विज्ञान। स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय एक सामान्य विज्ञान मानता है। आज अधिकांश समाजशास्त्री समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र में उन घटनाओं के अध्ययन पर जोर दिया जाता है जो सभी मानवीय अंतःक्रियाओं से सामान्य हैं। ऐसी सभी सामान्य घटनाओं का अध्ययन करने के कारण ही समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना गया है। समाजशास्त्र का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, भारत के विशेष संदर्भ में समाजशास्त्र के महत्व को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1, संपूर्ण मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने में सहायक। समाजशास्त्रीय ज्ञान संपूर्ण मानव समाज को समझने में योग देता है। साथ ही समाजशास्त्र तेजी से बदलते हुए जटिल समाजों की गतिविधियों एवं सामाजिक संरचनाओं के संबंध में भी वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है। समाजशास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति अपने रीति रिवाजों, परंपराओं, संस्थाओं एवं व्यवहार के तरीकों को ही सर्वश्रेष्ठ नहीं मानकर अन्य समाजों के तौर तरीकों या जीवन की विधि को भी समान रूप से महत्व देता है। इससे विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में भी योग मिलता है। नंबर 2, नवीन सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने में सहायक। समाजशास्त्र बदलती हुई परिस्थितियों में व्यक्ति के अनुकूलन को सरल बनाता है। व्यक्ति विभिन्न समूहों या समाजों के तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त ज्ञान की सहायता से बदलती हुई परिस्थितियों में आसानी से समायोजन कर पाता है। नंबर 3, समाज के सह अस्तित्व की भावना का प्रसार करने में सहायक। समाजशास्त्र यह बतलाता है कि मूल रूप में संसार के सभी मानव मेधावी मानव की संतान हैं। अतः किसी एक प्रजाति को अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठ या हीन नहीं माना जा सकता। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अनेक धर्मों, जातियों, प्रजातियों, संप्रदायों तथा प्रांतों के लोग साथ साथ रहते हैं, जिनमें कई बार संघर्ष भी होते हुए दिखाई देते हैं। समाजशास्त्र इन अंतरों के बावजूद भी व्यवहार के सामान्य ढंग खोज निकालने में प्रयत्नशील रहा है। समाजशास्त्र ने सहिष्णुता एवं सह अस्तित्व की भावना के विकास में भी योग दिया है। नंबर 4, परंपराओं के अध्ययन में योग। किसी भी समय की सामाजिक संरचना और व्यवस्था विभिन्न प्रकार के नियमों एवं परंपराओं पर आधारित होती है। ये नियम और परंपराएं व्यक्तियों के व्यवहारों को निर्देशित करती हैं और आचरणों को दिशा देती हैं। समाज विशेष के सामाजिक संगठन को समझने की दृष्टि से वहाँ प्रचलित जन रीतियों, रूढ़ियों और अन्य विविध प्रकार की परंपराओं को ठीक प्रकार से जानना आवश्यक है। समाजशास्त्र का इस दृष्टि से विशेष महत्व है कि इसके द्वारा सामाजिक परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 5, राष्ट्रीय एकता में सहायक। आज भारत के सम्मुख राष्ट्रीय एकता की समस्या एक प्रमुख समस्या है। आज राष्ट्र जाति, प्रजाति, भाषा, धर्म, प्रांत आदि के आधार पर भिन्न भिन्न छोटे छोटे स्वार्थ समूहों में विभक्त है। व्यक्ति संपूर्ण राष्ट्र या समाज के दृष्टिकोण से नहीं सोचकर अपनी जाति, धर्म, भाषा या प्रांत के दृष्टिकोण से सोचता है। परिणाम स्वरूप देश के व्यक्तियों में संकीर्ण दृष्टिकोण पाया जाता है। समाजशास्त्र जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद आदि के संबंध में यथार्थ जानकारी प्रदान कर व्यक्ति को उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने में योग देता है। नंबर 6, सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक। आज समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं दिखाई पड़ने लगी हैं। इन समस्याओं को ठीक समझने के लिए प्रत्येक समाज के सामाजिक संगठन के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। यह जानकारी समाजशास्त्र ही प्रदान करता है। आज भारत में बेकारी, निर्धनता, मद्यपान, जातिवाद, अस्पृश्यता, प्रांतीयता, भाषावाद, भिक्षावृत्ति, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध आदि अनेक समस्याएं पाई जाती हैं। इन्हें व्यक्तिगत प्रयत्नों से नहीं सुलझाया जा सकता है। इन समस्याओं की प्रकृति और कारणों को जानने तथा इनके निराकरण के उपाय सुझाने के समाजशास्त्री अध्ययनों के की नितांत आवश्यकता है। इनके अभाव में न तो किसी भी सामाजिक समस्या को वैज्ञानिक आधार पर सही परिप्रेक्ष्य में समझा और न ही उनका निराकरण किया जा सकता है। नंबर 7, व्याधिकीय सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायक। वर्तमान समाज में अनेक व्याधिकीय समस्याएं समाज रूपी शरीर को रोगग्रस्त किए हुए हैं। आज समाज में अपराध, बाल अपराध, श्वेत वसन अपराध, आत्महत्या, चोरी, डकैती, कालाबाजारी, व्यभिचार आदि अनेक व्याधिकीय समस्याएं पाई जाती हैं। समाजशास्त्री अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर इन समस्याओं के कारण संबंधों का पता लगाने में सफल हुए हैं। अब समाजशास्त्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों द्वारा बनाए जाते हैं। अतः अपराधियों का सुधार संभव है। नंबर 8, श्रम समस्याओं के निराकरण में सहायक। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में औद्योगिकरण तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आज भारत जैसा कृषि प्रधान समाज भी औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। औद्योगिक समाजों में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच तनाव और संघर्ष की स्थिति पाई जाती है। आज औद्योगिक क्षेत्रों में अनेक समस्याएं पाई जाती है, जैसे हड़ताल, घेराव, तालाबंदी, श्रमिक तनाव, काम की अस्वास्थ्यकर दशाएं, मालिक और मजदूर के झगड़े, उचित मजदूरी की समस्या, कार्यशील महिलाओं की समस्या आदि। इन समस्याओं को समझने और इनके निराकरण में समाजशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। यही कारण है कि आज समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में औद्योगिक समाजशास्त्र का विकास हुआ है। नंबर 9, ग्रामीण पुनर्निर्माण में सहायक। देश की अधिकांश जनसंख्या करीब 76% आज भी ग्रामों में निवास करती है, और ग्राम पिछले करीब 40 वर्षों के नियोजित प्रयत्नों के बावजूद आज भी अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। ग्रामों में निर्धनता, बेकारी, कृषि का पिछड़ापन, परंपरागत पेशों पर निर्भरता, ऋणग्रस्तता, जातिवाद, ऊंच नीच, अस्पृश्यता, अंधविश्वास, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं पाई जाती हैं। इन सब ग्रामीण समस्याओं को उस समय तक नहीं सुलझाया जा सकता जब तक कि ग्रामीण सामाजिक संरचना का समाजशास्त्रीय ढंग से अध्ययन नहीं किया जाता। ग्रामीण समाज के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करके ही इन समस्याओं की प्रकृति को समझा और इनका निराकरण किया जा सकता है। यही कारण है कि समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नंबर 10, नगरीय विकास में सहायक। वर्तमान समय में औद्योगिकरण की तेज गति के कारण नगरीकरण की प्रक्रिया भी काफी तेजी से चल रही है। शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा सुविधा, कचहरी, उद्योग धंधे और विभिन्न सुविधाएं ग्रामीणों को नगरों की ओर आकर्षित करती जा रही हैं। परिणाम स्वरूप नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। आज नगरों में अनेक समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे घनी बस्तियां, भीड़भाड़ युक्त वातावरण, मद्यपान, जुआ, अपराध, बाल अपराध, भिक्षावृत्ति आदि। इन सब समस्याओं के निराकरण या स्वस्थ आधार पर नगरीय विकास के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान का लाभ उठाना अत्यंत आवश्यक है। यह कारण है कि आज नगरीय समाजशास्त्र का समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में महत्व बढ़ता ही जा रहा है। नंबर 11, जनजातीय समस्याओं के उन्मूलन और जनजातीय कल्याण में सहायक। भारत में जनजातीय या आदिवासी लोगों की जनसंख्या 5,16,00,000 है। इन लोगों की अपनी विशिष्ट प्रकार की समस्याएं हैं। इन्हें सुलझाए बिना इनके जीवन को किसी भी प्रकार से उन्नत नहीं किया जा सकता। भारत सरकार जनजातीय समस्याओं के निराकरण और इन लोगों के कल्याण के लिए काफ़ी प्रयत्नशील है। प्रयत्नों की सफलता के लिए आवश्यक है कि जनजातीय समाजों का समाज शास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन किया जाए। इनके खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपरा, विश्वास अर्थात समग्र रूप में विभिन्न जनजातियों की संस्कृतियों को समझा जाए, यह कार्य समाज शास्त्रियों और मानव शास्त्रियों के द्वारा ही किया जा सकता है। नंबर 12, सामाजिक नियोजन में सहायक। अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया है कि आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए सामाजिक नियोजन नितांत आवश्यक है। सामाजिक नियोजन की सफलता के लिए समाज की सामाजिक संरचना, विभिन्न समूहों, प्रथाओं, मूल्यों, परंपराओं, विश्वासों एवं धर्म का ज्ञान आवश्यक है। यह ज्ञान समाज शास्त्र की ही प्रदान करता है। समाज शास्त्र यह बताता है कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में लोगों को नवीनता या परिवर्तनों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, शिक्षा और प्रचार के माध्यम से प्रेरित किया जा सकता है। नंबर तेरह, पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक। परिवार समाज की मूलभूत इकाई है और सामाजिक संगठन की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। परिवार के क्षेत्र में आज अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, साथ ही आधुनिक परिवार के सामने वर्तमान में कई प्रकार की समस्याएं हैं। आज बहुत से परिवारों में तनाव, संघर्ष और विवाह विच्छेद की समस्याएं पाई जाती हैं। इन सबके बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने का कार्य समाज शास्त्र ही करता है। नंबर 14, प्रजातंत्र को सफल बनाने में समाज शास्त्र का योगदान। प्रजातंत्र समानता पर आधारित है, परंतु आज विश्व के प्रत्येक देश में वर्ग, जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के आधार पर अनेक भेदभाव या सामाजिक दूरी पाई जाती है। ऐसे समाजों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सफलता में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में भी प्रजातंत्र में मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। यहाँ जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, प्रांत आदि के आधार पर अनेक भेदभाव पाए जाते हैं। यहाँ जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद और प्रांतीयता देश की भावनात्मक एकता में बहुत बड़ी बाधा है। इस भावनात्मक एकता के अभाव में प्रजातंत्र का सफल होना बहुत कठिन है। समाज शास्त्रीय ज्ञान संकीर्णताओं को कम करने और मानव के बीच ऊंच नीच की दीवार समाप्त करने में योग देता है। नंबर 15, समाज शास्त्र का व्यावसायिक एवं व्यावहारिक महत्व। समाज शास्त्र का व्यावसायिक व व्यावहारिक महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज समाज शास्त्री की सामाजिक इंजीनियर और सामाजिक चिकित्सक के रूप में भूमिका काफ़ी प्रमुख होती जा रही है। यही कारण है कि नियोजक, प्रशासक, समाज कल्याण अधिकारी, श्रम अधिकारी, प्रोबेशन और पैरोल अधिकारी, खंड विकास अधिकारी आदि पदों पर समाज शास्त्र के विद्यार्थियों को विशेष रूप से लिया जाता है। सामाजिक चिकित्सक के रूप में समाज शास्त्री सामाजिक समस्याओं के सूक्ष्म अवलोकन, विश्लेषण और उनके निराकरण में अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में संदर्भ में यहाँ समाज शास्त्र के अध्ययन का विशेष महत्व है।